प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरम्भ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
आइए श्रोता मित्र, इसी सुंदर संगीत रचना के साथ ही हम आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। आज हम मरकुस रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय को आरंभ कर रहे हैं। 14वें अध्याय के मुख्य विषय इस प्रकार से हैं, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का षड्यंत्र। दूसरा विषय है, बैतनिया में प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रीति भोज का आयोजन। तीसरा विषय है, यहूदा इस्करियोती द्वारा प्रभु यीशु के साथ धोखा। चौथा विषय है, फसह का पर्व। पांचवा विषय होगा, गतसमनी का बाग। छठा विषय होगा, यीशु को पकड़वाया जाना। और सातवां विषय होगा, यीशु पर मुकदमा चलाया जाना। 14वें अध्याय के यही मुख्य विषय हैं। आज हम 14वें अध्याय के 1 से 26 पदों को देखेंगे। इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम में कुछ आगे बढ़ें, आइए अपने मनों की तैयारी के लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर पिताजी, बड़ी दीनता के साथ हम अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी महान करुणा से ये सुंदर क्षण हमको प्रदान किए कि हम आपके जीवित और सत्य वचन का अध्ययन कर सकें। हमारी प्रार्थना है कि अपने वचन को समझने के लिए हमें बुद्धि प्रदान करने की कृपा करें, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन को हमारे लिए वास्तविक बना दें। यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी समस्या में है, किसी रोग से पीड़ित है, दुष्ट आत्मा ग्रस्त है, चिंता में है, किसी घोर पाप में फंसा हुआ है, प्रभु आप उनका छुटकारा करें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रवर, हमारे सामने मरकुस रचित सुसमाचार का सबसे लंबा अध्याय है। इस अध्याय में 72 पद हैं और वास्तव में हम एक गतिविधि पूर्ण अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसा अध्याय है जिसमें बड़ी गति पाई जाती है। अब समय आ गया है कि परमेश्वर का सेवक अर्थात प्रभु यीशु मसीह उस कार्य को पूर्ण करे जिसके लिए वह पृथ्वी पर आया, उसे उसके लोगों द्वारा मृत्यु दंड के योग्य ठहराया जाए तथा अन्य जातियों के हाथ प्राण दंड देने को सौंपा जाए। हमने इस अध्याय की रूपरेखा इस प्रकार से तैयार की है। सबसे पहले पहले और दूसरे पदों में हम देखेंगे महायाजक तथा शास्त्री मसीह यीशु को मार डालने का षड्यंत्र रचते हैं। 3 से 9 पदों में हम देखेंगे बैतनिया की मरियम द्वारा प्रभु यीशु मसीह के सिर पर इत्र उंडेला जाना। 10 और 11 पदों में यहूदा द्वारा प्रभु यीशु को पकड़वाए जाने के विषय में उसकी योजना के विषय में हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह अंतिम फसह तथा प्रथम प्रभु भोज की तैयारी करते हैं, हम इसे 12 से 25 पदों में देखेंगे। 26 से 31 पदों में पत्रस द्वारा वफादारी का दावा, इसके विषय में पढ़ेंगे। 32 से 42 पदों में प्रभु यीशु मसीह द्वारा गतसमनी के बाग में प्रार्थना करना, यीशु को पकड़वाया जाना, इसके विषय में हम 43 से 52 पदों में देखेंगे। महासभा के सामने यीशु पर मुकदमा, इसे हम 53 से 65 पदों में, और पत्रस द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जानने पर विरोध प्रकट करना, इसके विषय में हम 66 से 72 पदों में देखेंगे। स्वाइये इसी रूपरेखा के अनुसार हम अपने कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यीशु को मार डालने का षड्यंत्र। तो आइए मेरे साथ देखिए मरकुस 14 अध्याय पहला और दूसरा पद। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय पहला और दूसरा पद, यहां इस प्रकार से लिखा है, फसे और अखमीरी रोटी के पर्व के लिए 2 दिन शेष रह गए थे और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे चुपके से पकड़ें और मार डालें, परंतु वे कह रहे थे पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में दंगा हो जाए। श्रोता, फसह का पर्व पहले महीने के 14वें दिन मनाया जाता था, जो यहूदियों के अनुसार निसान तथा हमारे अनुसार अप्रैल का महीना है। ये लेव्य व्यवस्था की पुस्तक के 23वें अध्याय के 5वें पद की आज्ञा के अनुसार मनाया जाता था। महायाजक और शास्त्रियों ने ये योजना बनाई कि उसे अर्थात यीशु को पर्व के समय न मारा जाए, क्योंकि पहले महीने के 15वें दिन से अखमीरी रोटी का पर्व चलता था, जो सप्ताह भर रहता था। तत्पश्चात लोग यरूशलेम से अपने अपने स्थानों पर वापस लौट जाते थे और भीड़ कम हो जाती थी। इसके पश्चात हम दूसरा विषय देखते हैं, बैतनिया शमौन कोड़ी के घर प्रतिभोज पर प्रभु यीशु मसीह उपस्थित हैं। बैतनिया का एक व्यक्ति है जिसका नाम शमौन कोड़ी है, क्योंकि यह व्यक्ति कोढ़ से ग्रस्त था और प्रभु यीशु मसीह ने इसको चंगाई दी। अब इसके घर पर प्रतिभोज किया गया है और प्रभु यीशु मसीह वहां पर उपस्थित हैं। तो 3 से 8 पदों में हम इस विषय में पढ़ेंगे। यहां इस प्रकार से लिखा है, जब वह बैतनिया के शमौन नामक कोड़ी के घर में भोजन करने बैठा, तो वहां एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई, और उसने पात्र को तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेल दिया। परंतु कुछ लोग खिसियाकर आपस में कहने लगे, यह इत्र किस लिए नष्ट किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दीनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों को दिया जा सकता था। और वे उसे झड़कने लगे, परंतु यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों तंग करते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि कंगाल तो सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं और जब तुम चाहो तब उनके साथ भलाई कर सकते हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव नहीं रहूंगा। जितना वह कर सकती थी उसने किया, उसने मेरे गाड़े जाने के लिए पहले ही से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि समस्त संसार में जहां कहीं सुसमाचार का प्रचार होगा, वहां इस स्त्री के इस कार्य का वर्णन भी इसकी स्मृति में किया जाएगा। श्रोता, ये एक सुंदर घटना है, और ये सुंदर घटना यहूदा स्क्रूति के घृणित कृत्य से कुछ ही समय पूर्व घटती है। यूहन्ना बताता है कि ये स्त्री मार्था और लाजर की बहन मरियम थी, जिसने संसार की अपेक्षा प्रभु की संगति को प्राथमिकता दी थी। वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उनके प्रवचन को सुनती थी। शमौन उन कोड़ियों में से एक था जिन्हें प्रभु यीशु मसीह द्वारा चंगाई प्राप्त हुई थी, और वे पुनः समाज व परिवार में प्रतिष्ठित व्यक्ति समझे जाने लगे थे, और ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने घर प्रीति भोज में बुलाता है। वहीं पर एक स्त्री भी आती है, लिखा हुआ है, तो वहां एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई, और उसने पात्र को तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेल दिया। परंतु कुछ लोग खिसियाकर आपस में कहने लगे, ये इत्र किस लिए नष्ट किया गया, क्योंकि ये इत्र तो 300 दीनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों को दिया जा सकता था। मेरे मित्र, यूहन्ना अपने सुसमाचार में उस व्यक्ति के नाम का और कारण का उल्लेख करता है कि उसने क्यों इस विषय पर आपत्ति उठाई थी। यदि आप चाहें तो मेरे साथ देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय 4 से 6 पद। इन पदों में यूहन्ना इस प्रकार से वर्णन करता है, परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती ने, जो उसे धोखे से पकड़वाना चाहता था, कहा, इस इत्र को 300 दीनार में बेचकर कंगालों को क्यों नहीं दे दिया गया। उसने यह इसलिए नहीं कहा था कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास रुपयों की थैली रहती थी, और जो कुछ उसमें डाला जाता था वह उसे चुरा लिया करता था। यूहन्ना यहां पर यहूदा इस्करियोती का नाम स्पष्ट करता है और उसने क्यों आपत्ति उठाई थी उसके विषय में भी बताता है। उसको कंगालों की चिंता नहीं थी, उसको तो पैसे की चिंता थी क्योंकि वह चोर था। और आइए अब हम पुनः मरकुस रचित सुसमाचार में आते हैं, उसके 14वें अध्याय के 6 और 7वें पदों को देखते हैं। परंतु यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों तंग करते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। क्योंकि कंगाल तो सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं और जब तुम चाहो तब उनके साथ भलाई कर सकते हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव नहीं रहूंगा। मेरे मित्र, जब वे उस महिला को तंग करने लगे, उसे झड़कने लगे और उसके इस कार्य पर आपत्ति उठाने लगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसे छोड़ दो, उसने मेरे साथ भलाई की है। प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट करते हैं, यदि तुम वास्तव में कंगालों की सहायता के लिए चिंतित हो तो कंगाल तो सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें उनकी सहायता के अनेक सुअवसर प्राप्त होते रहेंगे, जब चाहो तुम उनकी सहायता कर सकते हो, किंतु मैं देह रूप में सदा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तब 8वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जितना वह कर सकती थी उसने किया, उसने मेरे गाड़े जाने के लिए पहले ही से मेरी देह पर इत्र मला है। मित्रवर, परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति से इतना ही करने को कहते हैं, अर्थात जितना वह कर सकता है उतना ही वो करे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जितना वह कर सकती थी उसने किया। परमेश्वर आज भी आपसे इतना ही कहते हैं कि जो कुछ आप कर सकते हैं, जितना आप परमेश्वर के लिए कर सकते हैं उतना आप करें। परमेश्वर उसी का आदर करेंगे, उसी पर आशीष देंगे, किंतु वो सब कुछ आप हृदय की सच्चाई से करें, प्रेम और स्नेह के साथ करें। ध्यान दें, मरियम में आत्मिक समझ थी जिसे उस समय वे प्रेरित भी ना समझ सके जो प्रभु यीशु मसीह के निकट थे। उसने यीशु के बदन पर कब्र में गाड़े जाने से पूर्व इत्र मला। मरियम वह स्त्री थी जिसने मसीह को इस पृथ्वी पर आने के अर्थ को समझा। उसने वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आगमन के अर्थ को समझा और उसने यीशु मसीह के बदन पर कब्र में गाड़े जाने से पूर्व इत्र मला। 9वें पद में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि समस्त संसार में जहां कहीं सुसमाचार का प्रचार होगा, वहां इस स्त्री के इस कार्य का वर्णन भी इसकी स्मृति में किया जाएगा। मित्रवर, मसीह यीशु की मृत्यु में सम्मिलित होना और कंगालों की सहायता करने में क्या अंतर है? प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट किया कि जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में सम्मिलित होता है वो आशीषित होता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस स्त्री के कार्य की चर्चा, इसका वर्णन भी इसकी स्मृति में सर्वदा किया जाएगा, जहां जहां सुसमाचार का प्रचार होगा इसका भी वर्णन किया जाएगा। मित्रवर, हम देखेंगे कि मरियम के इस हृदय स्पर्शी स्नेहपूर्ण कार्य के पश्चात तुरंत हम यहूदा इस्करियोति के घृणित कार्य के विषय में पढ़ेंगे। आइए देखें, यहूदा ने मसीह यीशु को धोखे से पकड़वाने के लिए सौदा किया। 10वें और 11वें पद को देखिए, और यहूदा इस्करियोति जो 12 में से एक था महायाजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे, और जब उन्होंने ये सुना तो प्रसन्न हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। अतः वेबसर ढूंढने लगा कि उसे किस प्रकार पकड़वा दे। मित्रवर, मरियम का कार्य ज्योति का कार्य था और हम यहूदा को अंधकार के कार्य के साथ देख रहे हैं। वह अब शैतान और अंधकार के कार्य को पूर्ण करने में लगा हुआ है। वह अब अवसर ढूंढ रहा है कि ज्योति को किस प्रकार से बुझा दिया जाए। अंतिम फसह और प्रथम भोज की तैयारी, इसे हम अग्रिम पदों में देख रहे हैं। 12वें पद से देखें, अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन जब फसह के मेमने का बलिदान किया जाता था तो उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहां चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसे खाने की तैयारी करें? उसने अपने चेलों में से दो को ये कहकर भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाकर लाते हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना और जहां वह प्रवेश करे उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है मेरा अतिथि कक्ष कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं? वह स्वयं तुम्हें एक बड़ा सुसज्जित ऊपरी कक्ष दिखाएगा, वहां मेरे लिए तैयारी करना। चेले चले गए और नगर में जाकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया और उन्होंने फसह की तैयारी की। बारहवें पद में हमने पढ़ा कि अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन जब फसह के मेमने का बलिदान किया जाता था तो उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहां चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह की तैयारी करें? मित्र, फसह को अखमीरी रोटी के साथ खाया जाता था, यह नियम था, और उसके पश्चात 7 दिन तक अखमीरी रोटी का प्रयोग होता था, जैसा कि निर्गमन की पुस्तक के 12वें अध्याय के 14 से 20 पदों में पाया जाता है। आप चाहें तो अपनी संतुष्टि के लिए निर्गमन की पुस्तक के 12वें अध्याय के 14 से 20 पदों को देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य मूसा की व्यवस्था का पालन करने को उत्सुक थे और फसह की तैयारी के लिए चिंतित थे। कुछ ही घंटों में प्रभु यीशु मसीह फसह के वास्तविक अर्थ को पूर्ण करने जा रहे हैं, वो इस बात से अनभिज्ञ थे। 13 और 14 पदों में हमने देखा कि उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों में से दो को यह कहकर भेजा कि नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाकर लाते हुए तुम्हें मिलेगा। मेरे मित्र, यहां प्रभु यीशु मसीह के किसी गुमनाम शिष्य की ओर संकेत किया गया है। उसने अपनी अतिथि कक्ष को प्रभु यीशु मसीह के लिए फसह के लिए खोल दिया है और हम किसी भी रूप में प्रभु की सेवा कर सकते हैं। ये व्यक्ति हमारे लिए प्रोत्साहन का कारण बनता है। हम किसी भी प्रकार से प्रभु की सहायता कर सकते हैं, उनके सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के लिए फसह की तैयारी के लिए फसा खाने के लिए अपना घर खोल दिया। 17 से 21 पदों में इस प्रकार से हम पाते हैं, जब संध्या हो गई तो वह 12 के साथ आया और जब वे बैठकर भोजन कर रहे थे तब यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। वे उदास हुए और एक एक करके उससे पूछने लगे, क्या वो मैं हूं? और उसने उनसे कहा, वह 12 में से 1 है जो मेरे साथ कटोरे में हाथ डालता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है। परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है, उस मनुष्य के लिए अच्छा होता यदि उसका जन्म ही ना हुआ होता। मित्रवर, फसह सूर्य छिपने से आरंभ होती है और आप देखेंगे कि ये फसह खाने के पश्चात वह जब अगली बार भोजन करेंगे तो वह अपने पुनरुत्थान के पश्चात सुबह का नाश्ता करेंगे। वह सुबह का नाश्ता होगा जो उन्होंने गलील की झील के किनारे अपने चेलों के साथ किया, और इसलिए ये सहभागिता चेलों के लिए एक सुंदर अवसर है जो इस समय प्रभु यीशु मसीह के साथ उनको प्राप्त हो रही है। 20 और 21 पदों में हम पढ़ते हैं, और उसने उनसे कहा, वह 12 में से 1 है जो मेरे साथ कटोरे में हाथ डालता है। प्रभु यीशु मसीह वहां पर स्पष्ट करते हैं कि तुम में से एक है जो इस सहभागिता के समय में मुझे पकड़वाने की तैयारी कर रहा है। यद्यपि यह सुंदर सहभागिता का समय है, किंतु तुम में से एक ऐसा है जो मुझे पकड़वाएगा, और उसका चिन्ह भी प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया कि जो मेरे साथ कटोरे में हाथ डालता है वही मुझे पकड़वाएगा। श्रोता, इसी समय यहूदा इस्करियोती वहां से चला गया था और यीशु को पकड़वाने की तैयारी में लग गया था। भजनकार राजा दाऊद ने भजन 41 के 9वें पद में इस विषय में नबूवत की है। और वो लिखता है, मेरे परम मित्र ने भी, जिस पर मैंने भरोसा रखा था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई। मेरे मित्र, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रत्येक चरण को पूर्ण कर रहे हैं। जो कुछ भी घट रहा है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार घट रहा है। इस अंतिम फसह के दिन प्रभु यीशु मसीह एक नया स्मृति चिन्ह देते हैं। ये कोई धातु का या बहुमूल पत्थर का स्मृति चिन्ह नहीं, वरन नाशमान पदार्थों का स्मृति चिन्ह है, दाखरस तथा रोटी। फसह में वे आने वाले फसह के मेमने की बाट जोहते थे, और प्रभु भोज में हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का स्मरण करते हैं। रोटी उनकी देह का प्रतीक है जो तोड़ी गई। जी हां मित्र, उनकी देह न कि कोई हड्डी। तब 22 से 25 पदों में हम पढ़ते हैं, जब वे भोजन कर रहे थे तो उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें देकर कहा, इसे लो, ये मेरी देह है। फिर उसने प्याला लिया और धन्यवाद देकर उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया और उसने उनसे कहा, ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं दाख का रस उस दिन तक फिर कभी नहीं पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया ना पीऊं। श्रोता, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक नया स्मृति चिन्ह दिया। प्रभु भोज के समय ना हम केवल पीछे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण करते, वरन भविष्य में उनके राज्य की स्थापना की बाट जोते हैं। जब हम उस वास्तविक फसह में सम्मिलित होंगे जो एक विशाल फसह का समय होगा। अब इन्हीं वचनों के साथ हम आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। प्रिय श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ पहुंचा होगा। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है और इसके द्वारा आपको आत्मिक आशीष मिली है। यदि आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके हृदय में कोई प्रश्न या संदेह है तो आप हमें इस पते पर अवश्य लिखकर भेजें। इस विषय में हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।